Omag Nyan Tumiran Dishignan Jan Shalar Gachakshuran Tamir Jasmai Shigari Sri Chaitanya Manovishtam Stabitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadame Dutati Svodandira Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhuntiyananda Sudhi Dhradhata Srivasati Gaurvati Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare अभी तक हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किए और चैप्टर 5 में अंत में भगवान ने शांति सूत्र बताया था कि जो व्यक्ति सही में शांति प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। जब हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि भगवान रथ पर बैठे हुए हैं युद्ध क्षेत्र के बीच में। जैसे समझ लो कि दो सेनाएं आमने सामने है, एलओसी के ऊपर या फिर आपस में युद्ध भूमि जो है वो शांति का स्थान नहीं है, है ना। युद्ध भूमि में मारना और काटना होता है, वहां शांति है, लेकिन भगवान उसको शांति का सूत्र बता रहे युद्ध भूमि में। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे सभी कर यज्ञ कर तप का भोक्ता मानता है, सभी लोक का महेश्वर मानता है और सबका अंतरंग मित्र मानता है। भोक्ता का अर्थ होता है कि सारी संपत्ति उनकी है, इसलिए कुछ भी चीज जिसका भोग किया जा सकता हो, इसको आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हो, वो सारी चीज के असली स्वामी भगवान। जब आप उनकी संपत्ति को उनको पूछे बिना या उनको अर्पण किए बिना उस हाथ तक भी लगाते हो तो आपको चोर माना जाता है, है ना। अगर आप समझो कि आपकी बस में बैठे हो, आजकल आज तो बस का छुट्टी है, लेकिन अगर आप कहीं और पैसेंजर आपके बाजू में कोई बैठा है और बैठे बैठे आप धीरे से उसके जेब तक हाथ ले जाओ और उसके जेब को छुओ और वो देखेगा तो क्या करेगा। हल्ला मचा देगा, उतार के फेंक देगा, बोले चोर का चोरी करता है, चोर आ गया यहाँ पर, है ना। केवल अभी तो चोरी किया नहीं है, अभी तो केवल हाथ छुआ है केवल जेब को। और हम भगवान की चीजों को दिन दहाड़े रोज छूते रहते हैं, भोग करते रहते हैं भगवान की संपत्ति को। कोई भी अच्छी चीज होती है, समझ लो खाने की, आपका पिज्जा समोसा कचौरी गुलाब जामुन रसगुल्ला इत्यादि, उसको देखते ही लोग क्या सोचेंगे, मेरे भोग करने के लिए। हालांकि तो भगवान ने बनाया। फिर पुरुष स्त्री को देखता है तो सोचता है अपना मेरे भोग के लिए, स्त्री देखती है पुरुष को देखती है तो बोलता है मेरे भोग के लिए, लेकिन स्वामी तो भगवान है, तुम कहां से आए बीच में भोग करने वाले, है ना। तो भोक्ता रम जी कहते प्रसाद, सबके अंतिम स्वामी भगवान है, सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वर का भोक्ता वही होता है ना कि जो ईश्वर होता है। अगर मैं किसी बगीचे के फूल को सूंघना चाहता हूँ, मैं उसका भोक्ता बनना चाहता हूँ, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये बगीचा मेरा है, दूसरे के बगीचे से मैं नहीं छू सकता। अगर उस अगर छूना भी है दूसरे के बगीचे में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। तो भगवान सभी लोग के महेश्वर है, अर्थात भोक्ता वो तभी हो सकता है कि जब वो ईश्वर हो, और वो ईश्वर है, परमेश्वर है, इसलिए वो भोक्ता है। इतने महान होने के बाद भी, इतने सभी लोग के महेश्वर होने के बाद भी हमारे सबसे प्रिय मित्र है जो आपके चींटी के साथ भी जाते हैं, मच्छर के साथ, जिसको आप लोग ये फॉल आउट लगा दिया, पसंद नहीं करते हम लोग, है ना, छिपकली, चूहा, कॉकरोच, ये ऐसे लोग हैं जिनको कोई देखना भी नहीं चाहता, राइट। या इससे भी निम्न तुच्छ वॉर्म इन द स्टूल, वो इतना निम्न होता है कि उसका तो कोई सोचना भी नहीं चाहता उसके विषय में तो। और उसके हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान उसके साथ जाते हैं दया करके, जो परम पवित्र है, जिनको प्राप्त करने के लिए हमें पूरा हृदय पवित्र करना पड़ता है। अगर आप ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेते तो आप ऑल्टर में प्रवेश नहीं कर सकते, इतने सारे नियम बनाए हैं, क्योंकि परम पवित्र है वो। ये परम पवित्र भगवान उस मल के कीड़े के हृदय में परमात्मा के रूप में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सबसे कनिष्ठ मित्र है सबके। जो इस तरह से भगवान को जानता है उसको ही शांति प्राप्त हो सकती है। और कोई शांति, जितना कितना भी शांति करो, जितना भी वाटाघाट करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। शांति ऐसे नहीं होती। तो ये श्लोक बोलने से पहले भगवान ने अष्टांग योग से भी वो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ऐसे रास्ते है। जैसे समझ लो कि आपको 10th फ्लोर जाना है, 10वें मंजिल 10वें मंजिल पे 10th फ्लोर, तो एक रास्ता है कि जिसमें आप सीढ़ी से लेके जा सकते हो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि बाजू में एक बिल्डिंग है, उसमें पर चढ़ के ऊपर एक ब्रिज है, वहां से आप 10th फ्लोर पर जा सकते हो, दूसरा एक रास्ता है। तो अर्जुन को बताया कि ये दो रास्ते तो है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये दो रास्ते तो है। तो फिर अभी तीसरा रास्ता भी है, बोले क्या? ऊपर से रस्सी फेंकी है, पकड़ के ट्रैकिंग कर सकते हो ऊपर, उसको पकड़ पकड़ के भी जा सकते हो, ये तीसरा एक रास्ता ये भी है। और चौथा रास्ता जो है वो 7वें अध्याय से शुरू होगा, जहां पर एलिवेटर लगा हुआ है, लिफ्ट, वो सीधा ऊपर ले जाता है। लेकिन एक रास्ता ये भी है। तो भगवान कहते हैं कि मुक्ति अष्टांग योग के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। तो फिर ये भी सुन लो अर्जुन, अष्टांग योग में क्या होता है। योगा लेटर में जब मैंने पढ़ा था तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से विकास होता है, जिसमें वो कर्म को मानने लगता है, भगवान को मानने लगता है, वेदों को मानने लगता है, फिर धीरे 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 वो बंद कर दरवाजा, तो धीरे 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 वो ज्ञान की प्राप्ति के प्रति आगे बढ़ता है। फिर वो समझने लगता है, बहुत भोग किया, थक चुका, अब कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, कितने समय से भोग कर ही रहा हूँ, कोई फायदा है, तो मैं थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति करता हूँ, आत्मा शरीर का अंतर क्या वो समझता हूँ। फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, फिर वापस ज्ञान में स्थिर होने के बाद वो ज्यादातर वो ब्रह्म में स्थिर होने का प्रयास करता है, निराकार ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करता है। उसकी बात हमने पहले की थी एक बार आपको। फिर अष्टांग योग के माध्यम से वो परमात्मा को समझने का प्रयास कर सकता है, आपके हृदय में बैठे, मेरे हृदय में भी है, हाँ है ना, उसको देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, परमात्मा को ध्यान करना है। तो उसका विधि क्या है? पूरा अष्टांग योग। और फिर जाके जब सेवा का अवसर आता है तब जाके वो भक्ति योग में जुड़ सकता है। तो ये आपको ये आएगा कभी भी ऐसे लिखने के लिए, योगा लेटर, उसको डिस्क्राइब करना है वो, हम अगर आवश्यकता होगी तो एक बार आपको फिर से सारे स्टेप्स फिर से एक बार बताएंगे योगा लेटर के। लेकिन ये योगा लेटर का जब भी आपका ऐसे आए तो आप उसको पॉइंट वाइज बना सकते हो कि कर्म योग है तो उसके लिए सेपरेट पैराग्राफ, टू पैराग्राफ, थ्री पैराग्राफ, व्हाट एवर यू वांट टू राइट, दो सेकंड पॉइंट, इफ यू वांट यू कैन मेक सम सीडी बना सकते हो लेटर जिसमें आप दिखा सकते हो, व्हाट एवर यू वांट, आई मीन दिस इज जस्ट एन आइडिया। सो चैप्टर 6 की शुरुआत भगवान उसी तरह से करते हैं, लेकिन चैप्टर 6 के 6 भाग है छोटे छोटे भाग है लेकिन फिर भी 6 अलग अलग भाग है। तो पहला जो सेक्शन है चैप्टर 6 का वो है 1 से 4, जिसमें अनासक्त कर्म से योग में प्रगति, कर्म के फलों के प्रति आसक्ति के बिना अगर कर्म किया जाए तो इस तरह से आप योग की शुरुआत कर सकते हो, ये इसका मुख्य बात है। दूसरा सेक्शन है 5 से 9, जिसमें योगा रूट स्टेज, जिसमें कर्म का त्याग आता है, योगा रूढ़ अवस्था। फिर तीसरा सेक्शन है वो है सीधा 10 से 32, 32, जिसमें मेथड है अलग अलग योगा अभ्यास की प्रक्रिया। फिर चौथा जो सेक्शन है वो है केवल 4 श्लोक का, 33 से 36, जिसमें चंचल मन के संयम करने की आवश्यकता उसकी बात कही गई है, नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग द टर्बुलेंट माइंड। फिर 37 से 45, असफल योगियों की गति, और अंतिम है 2 श्लोक 46-47, सर्वोच्च योगी। तो ये है ब्रेकडाउन, बहुत आसान है ना, वेरी सिंपल। चैप्टर बड़ा ही आसान है, जिसमें चैप्टर की अगर आप ऐसे एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। चैप्टर शुरू होता है निष्काम कर्म योग के कंटिन्यूएशन में, और फिर योगारूढ़ अवस्था की जो थोड़ी आगे बढ़ी हुई है, एडवांस स्टेज बोल रहे थे उसको, योगारूढ़ मीन्स एडवांस स्टेज, तो एडवांस स्टेज बताया है, और फिर मेथड है पूरा किस तरह से किया जाता है अष्टांग योग। उसके बाद अष्टांग योग का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है मन, उसके विषय में बताया है। फिर अर्जुन पूछता है कि अगर नहीं कर पाया कोई तो, बीच में अटक गया तो उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर भगवान बताते असफल योगियों का क्या है वो बताते, और अंत में फिर बताते अच्छा ये असफल है लेकिन जो सफल है वो कौन है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, तो फिर भगवान बताते सर्वश्रेष्ठ ये कौन कि जो मेरी भक्ति में लगा है। 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होता है। सो सिंपल राइट, है ना, सो सिंपल। 6वां अध्याय बड़ा आसान है। सो हम पहला श्लोक पढ़े चैप्टर 1 6 का।
श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वो नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है।
हाँ, यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही बात को फिर से दोहरा रहे, इट इज लाइक थर्ड टाइम, तीसरी बार भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन कर्म का त्याग नहीं करो, फल का त्याग करो। ये चीज बता फिर से, यहाँ पर सन्यास की बात हो रही है कि जो सन्यासी के जनरली क्या होता है कि साधारण सन्यासी जो होते हैं वो सन्यासी के लिए यज्ञ करना मना है, फायर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, यज्ञ अग्निहोत्र। हर एक व्यक्ति को रेगुलर रूप से अग्निहोत्र करना आवश्यक है, डेली अग्निहोत्र बोलते हैं उसका रोज, और कई बार उसको पंच यज्ञ भी बोलते हैं। पांच प्रकार के यज्ञ करना आवश्यक होता है, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है कर्मों का। तो सन्यास जब कोई लेता है, जब मायावादियों में कैसा होता है कि जब सन्यास लेता है तो वो सीखा सूत्र तो काट देता है, सीखा का अर्थ होता है ये चोटी और जनोई, ये तोड़ देता है सन्यासी मायावादी शंकराचार्य को फॉलो करने वाले, ये लोग तोड़ देते हैं। वो लोग अग्नि से दूर रहते हैं, मीन्स वो लोग कुकिंग नहीं करते और यज्ञ नहीं करते, ये सब नहीं कर सकते, अग्नि से दूर रहना पड़ता है उनको। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि सही सन्यासी वो है कि जो अपने कर्मों के फल के प्रति अनासक्त होता है, एंड हु वर्क्स एज ही इज ऑब्लाइज्ड इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। और जो कर्म वर्त एवं कर्म ही कर्म उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है, निष्काम कर्म योग को फॉलो जो करता है वो वास्तव में सन्यासी माना जाता है, वो योगी है। वो नहीं कि जो अपने कर्तव्य का त्याग करता है और जो अग्नि का अग्नि प्रकट नहीं करता। अर्थात प्रभुपाद जी भी इस विषय को बल दिए थे। अगर कोई अगर ये सोचता है कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया, भगवत गीता कई बार होता है ना, मंदिर में कोई व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ने से अगर उसको सही संग नहीं मिला है, सही लोग उसको नहीं मिले सिखाने वाले, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान आता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाता है। अभी उसको पता नहीं कि वो रह नहीं पाएगा इस तरह से। कई लोग होते हैं ऐसे, तो आपके मीडिया वाले ऐसी चीजों को पकड़ लेते, देखो तुम्हारा इस्कॉन वाला भाग गया, साधु बन गया, इस तरह से आपको कई बार लोग बोलते हैं। लेकिन वो ऐसा कमजोर व्यक्ति होता है, एक दो लेक्चर क्या सुन लिया, तो घर पे जाता है, माँ पूछती है बेटा आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, तो बच्चा बोलता है तुम माँ नहीं है माया है, तो भाई तुम शरीर, मैं बेटा, मैं कहां से बेटा, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं। तो ये मूर्ख होता है, वो इस तरह से सोचता है, तो अनएडवांस पर्सन ही थिंक्स आई हैव नॉलेज आई कैन एस्केप माई ऑल ड्यूटीज, मैं मेरी सारी ड्यूटीज को त्याग कर सकता हूं। तो इसलिए वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जो कर्म करता है वो वास्तव में सफल है, ही इज बेटर, वो सफल व्यक्ति माना जाता है। कई बार लोग प्रभुपाद के विषय में भी बोलते थे कि प्रभुपाद विवाह यज्ञ भी करवाया था, दीक्षा यज्ञ तो करते ही थे, खुद विवाह यज्ञ भी करवाया था, विश्वमती नंदन प्रभु का विवाह यज्ञ उन्होंने किया था प्रभुपाद जी ने। यशोमती नंदन प्रभु का जब विवाह हो रहा था, प्रभुपाद बैठे थे सामने और दो तीन असिस्टेंट थे उनके, लेकिन उनके सुपरविजन में हो रहा था। तो सन्यासी, वैष्णव सन्यासी होता है वो अग्नि से दूर नहीं रहता, वो यज्ञ करवाता है, क्योंकि यज्ञ दान तप क्रिया आता है 17-18 अध्याय में, क्या कि पावनानि मनुष्य नाम, वो तो ऋषियों को भी पावन करने वाला है। तो वैष्णव सन्यासी का अलग बात, अर्थात जो इसका उद्देश्य समझना चाहिए ना, केवल विदाउट नॉलेज केवल आप उसका त्याग करते हो उसका अर्थ नहीं है। सो दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है सत और एक होता है असत। तो सत कार्य करने वाला जो होता है, सत का अर्थ होता है शाश्वत वास्तविक कार्य, वो करने वाला, वो कर्म करने वाले व्यक्ति को सन्यासी माना जाता है, सत्यासी, जो सत के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, शाश्वत वस्तुओं के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, उसको सन्यासी बोलते हैं। तो उसके लिए तो कर्म करना आवश्यक है, लेकिन अगर आप भगवान सत के बदले असत की सेवा करते हो तो असत असत्यासी हो जाता है, असन्यासी। असन्यासी का अर्थ होता है कि वो माया की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का ये भी कहे, अगर कोई कृष्ण भक्त वैष्णव सभी नियमों का पालन कर रहा है, भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है, तो वो सन्यासी से भी ज्यादा अच्छा है, अगर वो गृहस्थ तो भी। कई बार कुछ लोग आकर मुझे प्रश्न पूछते, भाई ब्रह्मचारी आश्रम बेस्ट है या गृहस्थ आश्रम बेस्ट है? कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते कौन सा आश्रम, तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम गृहस्थ आश्रम के सारे नियम का पालन करते हुए कृष्ण भक्ति करते हो तो तुम ब्रह्मचारी से भी उत्तम हो। अगर कोई ब्रह्मचारी है, अगर वो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन नहीं करता है और माया के प्रति आकर्षित है, तो वो तो ब्रह्मचारी कल्याण के योग्य नहीं है। तो मुख्य बात ये नहीं कि तुम किस कौन से आश्रम में हो, तो ब्रह्मचारी आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है कि तुम्हारा मन कौन से आश्रम में है, या तुम्हारा मन कहां पर है, तुम किसका चिंतन करते हो, ये महत्वपूर्ण है। दैट्स इट। तो वो सन्यासी भी बन सकता है वो व्यक्ति। सो या
ब्रह्मचारी अगर मैरिज कर ले तो ऐसा होता है कि उसका सारा जो साधना होता है वो स्टॉप हो जाता है या बढ़ता है, ऐसा कुछ?
आश्रम उसकी भक्ति को कहीं पर भी रोक नहीं सकते। भक्ति जो ऐसी चीज है कि वो किसी स्थिति के बदलाव से परिवर्तित नहीं होती। अगर ब्रह्मचारी ने अच्छा साधना किया है और फिर भी अगर वो गृहस्थ बनना चाहता है, तो जहां से वो ब्रह्मचारी में था वहीं से आगे बढ़ेगा। ब्रह्मचारी अगर गृहस्थ बनता है तो उसका पतन नहीं माना जाता है, अगर वो कृष्ण भक्ति में स्थिर है तो। हाँ, अगर वो व्यक्ति माया के द्वारा आकर्षित होने के बाद अगर गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है तो उसके लिए एक जर्क मिल गया, उसको फुल स्पीड में गाड़ी जा रही थी, स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया तो थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा ना, और जब रुकेगा फिर धीरे धीरे पिकअप लेगा तो वापिस आगे बढ़ेगा। इज एज गुड एज दैट। गृहस्थ जीवन में केवल एक ही समस्या जिसको शास्त्र बोलते हैं वो एक ही है कि इसमें व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य के प्रति कम सजाग हो जाता है, उसका जो जीवन का जो उद्देश्य होता है ना वो मल्टी डिवीजन हो जाती है, क्योंकि पत्नी को संभालो, बच्चे को संभालो, परिवार के मेंटेन करो, तो उसका जो मूल उद्देश्य है लाइफ का कि भगवान को, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्ति करने इत्यादि, तो वो जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है उससे उसका मन जो है वो विचलित हो जाता है या जा सकता है, होने की संभावना है। इसलिए बोलते हैं कि जहां तक हो सके वहां तक सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। अगर लेना भी है तो भक्तों की संगति के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, भाई गृहस्थ जीवन लेना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन का बताओ तो सही, कैसे करने का, लाइफ कैसे जीने की होती है गृहस्थ जीवन की, चाहे माता हो या प्रभु है, पुरुष है, स्त्री है, सीखना तो पड़े ना कि कैसे गृहस्थ जीवन जिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सीधा शादी कर लिया, चार सात फेरे फर लिया, हो गया तुम्हारा लाइफ खत्म गृहस्थ, ना ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मैं सोच रहा था एक वर्कशॉप भी है, गृहस्थ वर्कशॉप, उसमें कुछ 8 घंटे का कोर्स है, वो सिखाया जाता है जिसमें कि किस तरह से एक भक्त को गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या क्या नियम होने चाहिए, कौन सी जिम्मेदारी है, और वो नियमों का पालन अगर कोई करता है तो कभी भी पति पत्नी में झगड़े होने की संभावना बहुत ही कम हो सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, और एकदम सुख से जीवन जी सकते हैं। बट ये ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, नॉट विदाउट ट्रेनिंग।
अपने इसमें होते हैं ऐसे ट्रेनिंग, इसको
मैं देता हूँ ना। एक बार मैंने किया था इसलिए।
अच्छा, मैं कभी सुनी नहीं इसलिए मुझे।
हाँ, मैं छोटे लेवल पे किया था, स्मॉल, बट किया था। ऐसे बहुत कम जगह होती है, दो तीन जगह पर, ऐसे तो बड़े बड़े मंदिरों में तो होता ही है, बट ऐसा एक ट्रेनिंग सेशन है अपना।
कितने इसमें पार्टिसिपेंट चाहिए कुछ?
8-10 इतने तो, क्योंकि एक्टिविटीज होती है ना।
अच्छा।
तो लेकिन वो उसमें 50% है सुनने का और 50% है बोलने का। इसमें आपको खुद बोलना है ना। तो ये इट्स वेरी गुड कोर्स है, इट्स वेरी हेल्पफुल। सुनने में ऐसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना शुरू करें, प्रयास करोगे तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रयास करते रहोगे, आपके पास सारी नोट्स है, महीने में एक बार पढ़ते रहते हो तो आसान है।
एक वो भक्ति वृक्ष नाम का भी कुछ कहे
ना, वो मैन्युअल भक्ति वृक्ष एक सिस्टम है जिसमें आप सिस्टमेटिकली किस तरह से एडवांसमेंट कर सकते हो। तो वो एक अच्छा सिस्टम है टीचिंग का, कुछ देशों में है, दुबई में और सब जगह बहुत प्रचलित है, मायापुर में, ऐसे तो कई जगह पर है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, कई जगह पर है, भक्ति बड़ौदा में है। तो एक प्रकार का टीचिंग सिस्टम है, तो वो इट्स वेरी नाइस। उसका भी सेमिनार हम कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना, इसमें दो दिन इनफ, टू आवर्स फॉर ईच डे, इसमें वी कैन शो यू।
भक्ति वैभव क्या होता है?
भक्ति शास्त्री खत्म करने के बाद होगा भक्ति वैभव, इसमें फर्स्ट 6 कैंट ऑफ श्रीमद भागवतम, पहले 6 स्कंद श्रीमद भागवतम के। आप सोचिए कि भगवद गीता पढ़ने में अगर आपको रुचि आ रही है, आनंद आ रहा है सारे श्लोकों को, अगर श्रीमद भागवतम का इस तरह से स्टडी होगा, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, इट वुड बी नेक्टर, इजंट इट, अमृत जैसा लगेगा आपको। मैं जब भी ये भक्ति वैभव का डिस्कशन करता हूँ, पढ़ाता हूँ या किसी को भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमृत के कुंड में स्नान हो रहा है। इट्स सो ब्लिसफुल, आनंद आनंद, हृदय में एकदम प्रफुल्लित हो जाता है हृदय श्रीमद भागवतम को डिस्कस करने से ही।
ऐसे भी प्रभु जी, भक्ति भगवत गीता से भी श्रीमद भागवतम का कोई भी अंग कहते हैं, अंश कहते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। भगवत गीता में मतलब नियम का पालन है, नहीं है सब है, लेकिन उसमें भगवान की लीलाएं कहते हैं ना, तो सब तो उस समय के लिए तो जैसे मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली ऐसा लगता है।
प्रभु जी, एक मेरा एक सवाल है कि सारे जितने आश्रम हैं वो गृहस्थ आश्रम से ही ओरिजिनेट होते हैं। गृहस्थ आश्रम जो है सारे आश्रमों का मूल है। लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम को इतना तिरस्कृत तो नहीं कहना चाहिए, इतना उस तरह से क्यों देखा जाता है कि गृहस्थ आश्रम का मतलब है फंस गया या गृहस्थ आश्रम, क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो सारे आश्रम खत्म, न उत्पत्ति होगी, न ब्रह्मचारी बनेगा, ना
समझ गया आपकी बात।
तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है ग्रस्त ग्रस्त जो है वो ग्रस्त?
अच्छा, गुड क्वेश्चन।
जबकि एक और है कि जितने जिनकी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनका ज्ञान है, सारे ग्रस्त हैं, चाहे वो व्यासदेव जी को ले लें, जो उनको जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं, और बड़े बड़े जितने भी ले लें, सारे बहुत बहुत हर क्षेत्र में है, वो ग्रस्ती लोग थे। तो उनको फिर क्या ऐसा कारण है कि उनको ही लोग ऐसे नजर से देखते हैं कि खासकर जो दूसरे आश्रमों में चले जाते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो 4 आश्रम जो है उसमें से भगवान ने 3 आश्रम को तपस्या के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। तीन आश्रम। तो स्वाभाविक रूप से भगवान ये स्वयं चाहते हैं कि तपस्या हरेक आश्रम में प्रबल होना चाहिए, ये भगवान का अपना इच्छा है, क्योंकि ये सिस्टम उन्होंने बनाया। फिर भी गृहस्थ जीवन में छूट दी थोड़ी, लेकिन अब जब छूट देंगे तो प्रोक्रिएशन अर्थात जो प्रजोत्पत्ति करनी है उसके लिए आपको पुरुष और स्त्री का संपर्क होना आवश्यक है। और सारे शास्त्र में ये जो संबंध या ये जो सुख है, पुरुष और स्त्री के संबंध का जो सुख है, वो सुख को माया का अंतिम वेपन माना जाता है। माया अगर इंद्र क्यों ऐसा करता है, बार बार अप्सराओं को भेजता है, क्योंकि उसके पास जब कुछ नहीं बचता है तब फिर अप्सराओं को भेजता है, इसलिए वो माया का अंतिम वेपन माना जाता है। पास्ट में ऐसे कई एग्जांपल्स है राजाओं के कि जिन लोगों ने इस प्रकार से मोहित होकर के अपने जीवन को नष्ट किया था। सो मैनी ऑफकोर्स, वो तो वो ऋषि बाद में बन गए थे, ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, मेनका ने उनको डिस्टर्ब किया, बाद में बन गए थे ब्रह्मर्षि, फिर से एबीसीडी किया, फिर से बन गए ब्रह्मर्षि। इसलिए पुरुष और स्त्री के संबंध की जो जो ग्रंथि बोली जाती है उसको, वो श्रीमद् भागवत में ऐसा श्लोक है कि पुंसाम स्त्री मिथुनी भाव में तद तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहौर, जिसमें कहा गया है कि जब पुरुष और स्त्री करीब आते एक दूसरे के तो उनके प्रति एक प्रकार का विशेष शरीर की आकर्षण होती है, ऐसा 4 फुट दूर से उसके वेव शुरू हो जाते हैं, 4 फुट दूर से उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो जब पास में आते हैं तो हृदय ग्रंथि, उन दोनों के हृदय में एक प्रकार का मजबूत बंधन गांठ लग जाती है, फिर वो व्यक्ति अतः गृह चित्र सूत आप्त वित्त, फिर वो सोचने लगता है कि घर परिवार सूत प्रॉपर्टी वित्त धन ये सब, उसके बाद स्त्री का दूसरा नाम है विस्तार, तो ये धीरे 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 बढ़ता है और अंत में क्या आता है, जनस्य मोहोय, वो व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, अहम ममेति, और वो सोचना रहता है ये मैं हूं और ये मेरा है। ये कारण है क्योंकि गृहस्थ जीवन को उसको तिरस्कृत नहीं किया गया, लेकिन उसको सावधानी बरतने के लिए इस प्रकार से सारे वैदिक शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है कि अगर आप उसके सावधानी नहीं रखोगे तो आप फिसल सकते हो, है ना। तो इसके लिए, और जहां तक ये वेद व्यास है और ये जो रचयिता है कि हमारे ऋषि मुनि जो ये लोग जो गृहस्थ जीवन में है, लेकिन उन्होंने भी जो रचने वाले लोग है उन्होंने भी इसी जन्म इसी जीवन को श्रेष्ठ माना है कि जिसमें आप शरीर की अवस्था से मुक्त हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन में समस्या होती है कि व्यक्ति शरीर की भावना में फिसल पड़ सकता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो गृहस्थ होने के बाद भी माया से आकर्षित नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, जैसे भक्तिवत ठाकुर गृहस्थ थे फिर भी वो माया से आकर्षित नहीं थे। श्रीमद भागवत में भी आता है एक जो मनु का वंशज था, वो ये तपस्या में लगा हुआ था, लेकिन वहां पर उस समय प्रजोत्पत्ति की आवश्यकता थी, तो भगवान का भक्त था, तो मना किया, बोले मैं कोई इसमें पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर जब आदेश दिया भगवान ने, मैं चाहता हूं तुम प्रजोत्पत्ति करो, बोले मैं कोई लड़की वड़की ढूंढने वाला नहीं हूं, बोले वो भी मैं भेज दूंगा तुम्हें, सब कुछ तुम शादी भी तुम्हारा मैं ही करा दूंगा, डोंट वरी एवरीथिंग, तो शादी किया, लेकिन क्यों, बोला था आदेश दिया करो, ये आवश्यकता है। और समझ लो शादी हुआ और 2 महीने 4 महीने में अगर भगवान अब हो गया तुम्हारा काम आउट, गृहस्थ तो त्यागने को तैयार है, दैट इज द वे ऑफ गृहस्थ लाइफ। यही एक कारण है, वन ऑफ द रीजंस, कि गृहस्थ जीवन जो है उसका तिरस्कृत नहीं है लेकिन उसमें सावधानी की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि अधिकतर 99.9% लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा की अवस्था पर नहीं है, और शरीर मानने वाला व्यक्ति अपने और अपने परिवार के साथ अपनी पहचान कराता है, और यही एक कारण है कि वो गृहस्थ जीवन बंधन का कारण बन जाता है। देयर आई मीन चेन्नई में वो जो गृहस्थ सेमिनार करेंगे ना कभी, उसमें सारी डिटेल को अपने गृहस्थ व्हाट डज इट मीन द वर्ड इटसेल्फ यू नो, ऐसे तो आसान है ग्रह में जो स्थिर रहते उसको गृहस्थ बोलते हैं, बट व्हाट इज गृहस्थ सेकंड कैंटो में श्रीमद भागवतम के सेकंड कैंटो में, फिर फोर्थ सेवंथ कैंटो में इसकी डिटेल। सो मन जो है उसको बिजी रखना ही आवश्यक होता है। जैसे बच्चा कभी माँ बच्चे को कहते कि बेटा एक एग्जाम्पल प्रपद दिए, दोज वो आर एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैव टू वर्क फॉर कृष्णा जस्ट लाइक एन अपसेट चाइल्ड। अगर बच्चा रूठ गया है तो माँ का माई डियर चाइल्ड सिट डाउन हियर, बच्चा आ जाता है बिठाता है और माँ, और फिर माँ क्या कहती है, लो ये पजल है इसको खोलो, लो ये चीज है इसको ठीक करो, ये करो वो करो, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्रिएट। जैसे उसके पास कोई चीज नहीं बच्चे की करने के लिए तो क्या होगा, आसपास में जितने भी लोग हैं सबको डिस्टर्ब करेगा, है ना, कोई एक्टिविटी ढंग से होने नहीं देगा।
यही एग्जांपल अभी दो दिन पहले गुरु महाराज दिए थे,
है ना, वो करने नहीं देगा, उसको एंगेज रखना पड़ेगा। आप सोचिए कलयुग के, कलयुग का नहीं, अज्ञान में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से बच्चे का पहले से ऐसा नेचर होता है कि लोग मुझे देखो, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मेरी बात सुनो, मैं लाइमलाइट में रहूंगा, आई एम द बेस्ट, मुझे देखो। बचपन से डिप रूटेड अहंकार, डिप रूटेड, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ। आपके बच्चे में क्या अहंकार, अरे बच्चे में अहंकार नहीं तो देखो क्या उसका, यही तो रीजन है, बता रहा है मुझे देखो मेरी बात सुनो, दैट इज द नेचर ऑफ चाइल्ड। ऑफ कोर्स बच्चे का स्वभाव भी एक रूप से, बट अगर उसको काम में लगा के रखोगे, जैसे आपके कई टेम्पलों में पार्क होते, लेक्चर के टाइम पे एक डिवोटी को एंगेज किया जाता है, बोले पार्क में बच्चों को साथ, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मन को अगर आप इस तरह से एंगेज रखोगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप उसको शांति से बैठने दोगे तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। प्रभुपाद सेज कि 24 hours you can dance, you can eat, you can serve, you can do whatever you want, you know, but then आपका mind engaged रहता है। इनके आपने कभी ऐसा एक भी ऐसा फोटो आज तक देखा है कि जिसमें गोपियां ध्यान में लगी हुई है या कृष्णा स्थान योग कर रहे हैं, या चैतन्य महाप्रभु किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा के बैठे हैं, कभी ऐसा देखा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द वे to control the mind. Of course, there is one of the way, but it is not the absolute way to control the mind. So, अब भगवान संन्यास और योग का आपस में क्या संबंध है वो बताते हैं। अभी तो संन्यास की बात हुई ना, अभी योग और संन्यास के आपस की बात बताते हैं, वो पढ़िए सेकंड लाइन।
हे पांडव पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता।
हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग मानो, इसका अर्थ क्या होता है कि योग का अर्थ होता है जुड़ना, योगा, हाँ नहीं बोलते जुगानुयोग ऐसा बोलते हैं, योग हो गया, कौन सा योग है अभी, कौन से ग्रहों में योग होता है कि कौन सा योग चल रहा है, सब जगह योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ता नहीं है तो उसका ज्ञान, उसका कर्म, ये सब योग नहीं बन सकते। अर्थात वहां पर भगवान का होना आवश्यक, या तो ब्रह्म होना चाहिए या परमात्मा होना चाहिए या भगवान होना चाहिए, अन्यथा वो योग नहीं बचेगा, वो योग नहीं रहेगा, वो केवल फिर नॉर्मल वो कर्मी ज्ञानी बनेगा, कर्मी बनेगा ज्ञानी बनेगा, योगी नहीं बनेगा वो। तो यहाँ पर योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, और सन्यासी और योगी भगवान कहते हैं कि दोनों एक समान है। जो सन्यासी है वो योगी भी है। सो लेकिन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओ सन ऑफ पांडु, फॉर वन कैन नेवर बिकम अ योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी तक भगवान ने क्या बताया था कि कर्म के फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। अब यहां पर भगवान ने एक चीज बताया योग की, जब बात हुई तब, कि सन्यासी हो या योगी हो, उसके लिए कोई भी व्यक्ति तब तक योगी नहीं बन सकता जब तक इंद्रिय भोग की क्या है,
इच्छा का त्याग,
इच्छा का त्याग ना हो, तब तक वो योगी नहीं बन सकता। तो मूल बात ये नहीं कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, मूल बात है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, ये बात है। इंद्रिय भोग की इच्छा जब तक आप त्यागेंगे नहीं, तब वो ज्ञानी भी नहीं रह सकता। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सबसे वो ये है मूल शत्रु, भौतिक इच्छा, ये हम सबका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि अगर समझ लो कोई व्यक्ति का भौतिक इच्छा कामना वैसे का वैसा है और वो योग का आचरण भी करता है, तो बाद में क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा, है ना। इच्छा को दबाए तो नहीं सकते, इच्छा ऐसी चीज होती है जिसको दबाने से वो
और बढ़ती है
ना, जंप करता है, स्प्रिंग करता है,
ब्लास्ट।
जैसे स्प्रिंग को कैसे दबाओ तो एकदम से खुलती है, तो इस तरह से इच्छा, भौतिक इच्छा ऐसी है कि उसको सही दिशा नहीं दो, लेकिन उसको दबा दिया जाए तो कभी ना कभी वो बड़ा रूप धारण करके प्रकट होएगी। इसलिए भौतिक इच्छा अगर पूरी नहीं हुई और वो व्यक्ति योग में लग गया या अष्टांग योग में लग गया या फिर वो इस्कॉन में जुड़ गया, संन्यास ले लिया, तो क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा। तो भौतिक इच्छा वो जैसे समझ लो कि कोई नौका है, उसको अगर आप बांध के रखो और फिर कितना भी प्रयास करो, और भौतिक इच्छा, एक बारात थी रात को निकली थी कोलकाता से गांव में जाने के लिए, लगाए पूरा रात, पूरा बारात बैठी थी, बड़ी नौका थी, 100 लोग बैठ सकते, पूरा रात उसने चलाया नौका, सुबह वो सब नींद में से उठे, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, बस बोले पहुंच नहीं आए, बोले कहाँ पहुंच गए, हम तो वहीं के वहीं है, बोले मैंने पूरा रात नौका चलाया, क्या बात करते हो, बोले तुमने भले ही ना पूरा रात नौका चलाया, लेकिन नौका तो वहीं का है, क्योंकि तो उसने क्या किया था, जो रस्सी है खोला नहीं। तो अगर आपके हृदय में बहुत एक इच्छा है, आप कितना भी करो साधना वगैरह सब, लेकिन भोग करने का इच्छा ये बड़ा शत्रु है हमारा, इंद्रिय भोग करने की इच्छा, हम भोग करना चाहते हैं भगवान से स्वतंत्र होकर के, ये हमारी समस्या है। और इस समस्या को हम स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी परेशानी, यही तो रोग है ना हमारा, हमारा रोग क्या है, यही तो रोग है कि हम भौतिक इच्छा से ग्रस्त है, हम भोग करना चाहते हैं। इसलिए जब प्रहलाद महाराज एक बार एक युवकों को जानते हैं, अब युवकों आप भक्तों को प्रभुपाद बायोग्राफी भी पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद बायोग्राफी बहुत सुंदर ग्रंथ है, बड़ा वाला। तो एक बार क्या हुआ, जैसे आप एलन गिंसबर्ग को जानते हो, वो एक जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना है, तो ये लोग उस समय के सब बड़े बड़े संगीतकार और गायक थे, बीटल्स बोलते हैं उस समय के। तो ये एलन ये सब विदेश में जब प्रभुपाद से मिले थे, तो एलन गिंसबर्ग जो था वो भी बड़ा संगीतज्ञ था, लोग पागल थे उसकी एंट्री आने से, ये सब लोग लाखों लोग इकट्ठा हो जाते। तो ऐसा एक थे योको करके था, बड़ा बेशर्म आदमी था लेकिन बहुत फेमस था पब्लिक में। प्रभुपाद को अपने घर पे बुलाया था तो वो उसकी पत्नी, वो बिल्कुल पैसा बहुत था उनके पास लेकिन पशु जैसा जीवन जीते थे। तो प्रभुपाद ने एक बार उसने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आपके पास केवल यही एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र और कोई मंत्र नहीं है? कई बार लोग आपको पूछते ना, न्यूज़पेपर वाले मीडिया वाले पूछते, बोले और कुछ गाओ हरे कृष्ण गाते, और कुछ गाओ, हमें कुछ ना कुछ। प्रभुपाद ने कहा है ना, बोले और कोई मंत्र? प्रभुपाद का बहुत मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे श्लोक है, और भागवत में तो 18,000 श्लोक है। तो मैं कोई भी एक श्लोक, प्रभुपाद ने बोला मैं एक श्लोक गाता हूँ तुम्हारे लिए, कोई दूसरा मंत्र बताता हूँ? हाँ बताओ बताओ कौन सा दूसरा मंत्र है। तो प्रभुपाद ने शुरू किया, मतीर्ण कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां दान्त गोभिर्विसतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानां। प्रभुपाद ने बताया प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है, इसमें कहा है कि जो जो व्यक्ति मिथो विपद्येत गृहव्रतानां, जो गृहव्रत में बड़ा मजबूत रूप से फंस गया हुआ है, गृहव्रत व्रत, व्रत का क्या होता है? हाँ व्रत लिया है मैंने, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको पकड़ के रखूंगा, इसको गृहव्रत धारी बोलते हैं, गृहव्रत धारी। तो जो व्यक्ति गृहव्रत धारी का अर्थ कहने का अदांत गोभीर विशतांत मिश्रम, अर्थात वो व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छा में इतने मग्न है, इतने मग्न, जैसे अगर सनफ्लावर का फूल होता है, जैसे कमल का फूल होता है, तो कमल का फूल क्या होता है, जैसे वो सूर्य बंद हो जाता है तो फूल भी बंद हो जाता है, राइट। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको, जो हनी होता है वो पीने के लिए भी बैठा रहता है, उसको बोला जाता है लास्ट में देखो अब तुम्हारा काल आने वाला है, देखो मृत्यु आ सकती है कभी भी, सूर्य अस्त होने वाला है, तुम फंस जाओगे इसके अंदर, तो बस एक मिनट और, बस एक मिनट और थोड़ा जूस ले लेता हूँ इसमें से, थोड़ा बहुत स्वाद अभी तब मिला ही है, तो फिर थोड़ा बहुत, और उतने में क्या आ जाता है, मृत्यु आ जाती है ना, वो मर जाता है। तो गृहव्रतधारी इस प्रकार के जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए दिन रात इतना भरसक परिश्रम करते हैं, वो लोग की मति जो है उसको भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। मतिर न कृष्ण, उनकी मति कृष्ण में नहीं लगती, वो भक्त नहीं बन सकते। कौन? जिसकी भौतिक इच्छा बहुत तीव्र है, मतलब न कृष्ण परत स्वतो वा, वो अपने प्रयास से नहीं और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल यू नो और भी लोग मिलकर भी उसको भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, फिर भी बहुत मुश्किल, नहीं बन सकता वो भक्त। अदांत वो भी विस्तांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवाना, वो व्यक्ति चबाई हुई चीज को बार बार चबाने का प्रयास करता है, बार बार। अपने कभी गोवर्धन में गन्ने का जूस पिए है ना, वो परिक्रमा करते थे, या फिर अब गन्ने आपके सामने निकाल के देते ना गन्ने का, एक्सक्यूज मी, सो गन्ना उसको एक बार निकालते हैं उसमें से पूरा रस निकल जाता है, फिर क्या करता है जो शॉपकीपर होता है दूसरी बार डालता है, अभी जो बचा है कुछ वो भी निकाल दो, उसका भी जूस निकालता है। अब सारा जूस निकल गया, उसके बाद जो गन्ने का जो कूचा बचा जो निकल गया सब उसका, उसको चबाने से कोई फायदा होगा? आज तक आपने कभी ऐसा कोई व्यक्ति को देखा है कि वहां पर गन्ने वाले के पास बैठ करके जूस दूसरे को दे रहा है और गन्ना का जो कचरा है वो कोई चबा रहा है? देखा कभी आपने ऐसा कोई कोई व्यक्ति? नहीं। क्या कभी आपने फेंके हुए चिंगम के प्रति किसी को आकर्षित होते हुए देखा है? किसी ने चिंगम चबाया है, चिंगम और चबाया है और चबाया, एक एक घंटा दो दो घंटा चिंगम चबाने के बाद जब उसमें कुछ नहीं बचा है, उसमें ना जूस निकल रहा है ना कुछ बचा है उसका रस। मैं तो चिंगम बहुत एक दो बार खाया होगा बचपन में शायद, कभी लाइफ में खाया ही नहीं चिंगम। लेकिन वो चिंगम जो कोई उसको थूक देता है उसके प्रति किसी का आकर्षण हो सकता है, लेकिन हमारे जो भौतिकवादी लोग हैं उन लोगों की पुनः पुनः चर्विता चर्वणानाम, चबाई हुई चीज को बार बार चबाते, इस पे कोई रस प्राप्त नहीं होता फिर भी चाहते, फिर भी चबाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग की इच्छा, और इसलिए वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जब तक हमारे हृदय में भक्ति लता को विकास करने की इच्छा है तो ये अन्याभिलाषी दास संयम इसका मापदंड है। अगर आपको चाहिए कि आप भक्ति योग में आगे बढ़ो, अगर आप चाहिए कि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ो, तो आप ये समझ लीजिए कि भौतिक इच्छा को आज नहीं तो कल आपको त्यागना पड़ेगा। वो अपने आप अगर आपकी मन आपकी इंद्रियां भगवान की सेवा में व्यस्त हो जाती है तो इच्छा अपने आप चली जाएगी, थोड़ा बहुत उछल कूट करेगी लेकिन बाद में चली जाएगी। इच्छा है तो कष्ट होता है, कोई भी चीज चेंज इज ऑलवेज नॉट वेलकम, राइट? परिवर्तन कोई पसंद नहीं करता। जब भी आप परिवर्तन का मन देते हो तो प्रभु जी इसमें ये प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम। परिवर्तन मीन्स द फर्स्ट रिएक्शन इज रिजेक्शन परिवर्तन में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवर्तन हो तो थोड़ा बहुत हार्ड बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, और इंद्रियों की जो इच्छा है उसको सहन करना सीखना पड़ेगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि आप आप लूजर हो, ये नहीं सोच रहा कि मैं तो मैं तो नुकसान हुआ मेरा, बर्बादी हुई मेरी, ये नहीं सोच रहा। यू आर नॉट द लूजर, यू आर द गेनर। सो अगर ये रहेगी इच्छा, भौतिक इच्छा अगर रहेगी ना, तो वो अनर्थ का रूप लेकर के आपकी भक्ति लता को कभी भी नष्ट कर सकती है। आगे जाकर के आप उच्च अवस्था में पहुंच, भरत महाराज जैसे उच्च अवस्था पर पहुंचने वाले व्यक्ति की भौतिक इच्छा क्या रह गई? हिरण के प्रति आसक्ति, इतनी अवस्था। इसलिए भौतिक इच्छा से सावधान रहना चाहिए। और ये कोई एक दिन वाला नहीं है कि आज डिवोटी बने तो कल महात्मा बने, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। इसका उपाय भी बड़ा सिंपल है, भक्तों का संग। सो हाँ,
भक्तों का संग में भी हमारा तो बहुत,
अगर आप भक्तों का संग करने में आप कमजोर हो, आपको पता नहीं कि भक्त किसको बोलते, किसका संग करना चाहिए और कौन से संग से क्या मिलता है, अगर ये सब पता होना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे व्यक्ति के संग करते हो कि जो नया भक्त है, तो आपको क्या सिखा पाएगा? वो आपको वही सिखाएगा जो जिसके प्रति उसका आकर्षण है। फिर अब आप 6 महीना साल भर संग करने के बाद आपको लगेगा इसमें तो मेरी प्रगति तो हुई नहीं, मैं तो अच्छा संग किया उसके साथ, काफी मेरे रिश्तेदारों का फोन सबको हटा दिया था, इसके साथ संग करने लगा, लेकिन परिणाम यह आया कि 1 साल के बाद भी मैं तो हालांकि जो था उससे भी नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पता नहीं किया कि कौन से भक्त का संग करना है मुझे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, अगर भक्त के संग में अगर आपको माया लगती है इनकेस, तो 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन वो है कि आपका चुनाव गलत है, कि आपने गलत भक्तों के संगति करने का आपने सोचा चुना, एक तो चुनाव गलत है। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर आपको अच्छे भक्त की संगति से माया लगती है तो वास्तव में आपके माया आपको ट्रिक कर रही है। अगर आपको अच्छी संगति है उससे अगर आप दूर होना चाहते हो तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि आपका मन को माया चीट कर रही है, कि आपको भक्तों के संग के नाम से अच्छे भक्तों के संगति से भी हटा रहे। दैट्स द पॉइंट। तो जानना बड़ा आवश्यक है। सो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड श्लोका जो है,
अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है।
यस, तो यहाँ पर इसको बड़ा आसान है समझने, कोई मुश्किल नहीं है। योगी के 8 स्टेज होते हैं अष्टांग योग के, 2 अवस्थाएं होती है योगियों की, एक होता है योग रुरुक्षु और दूसरा होता है योगारूढ़। ये 2 अवस्था होती है। योग रुरुक्षु का अर्थ होता है कि जो नियोफाइट है, जो नया जुड़ा हुआ है, और योगारूढ़ वो व्यक्ति माना जाता है जो एडवांस है। तो यम नियम आसन उसका अष्टांग योग कौन से है? मैं चाहता हूं भक्त लोग को कि आप सब इसको कंठस्थ कर लेना कि 8 स्टेज कौन से होते हैं। यम, यम का अर्थ होता है डूज, है ना, करने जैसे कार्य, कि ये करना, ऊंचे स्थान पे मृग चर्म पर बैठना, 2 आंखों को नाक के अग्र भाग पर स्थिर करना, यू नो, इत्यादि। तो यह है यम। नियम का अर्थ होता है नहीं करना, यू नो, यम और नियम, आई मीन यम नियम का अर्थ होता है डूज एंड डोंट्स। तो उसमें नहीं करना है, जैसे नहीं करने वाले का क्या अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो यम है। एकांत स्थान में जाकर के करना है, जंगल में जाकर के पवित्र स्थान पे, वो यम है। नियम का अर्थ होता है ये नहीं, इंद्रियों के भोग से परेशान नहीं होना, किसी पुरुष स्त्री का संपर्क नहीं करना, इस प्रकार के बहुत सारे नियम होते हैं। डोंट्स, ज्यादा ऊंचा नहीं आसन, ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए आसन, है ना। तो ये है डोंट्स, डूज एंड डोंट्स, यम और नियम। तो यहाँ पर ही सब लोग समाप्त हो जाते हैं इसको फॉलो करने में ही। आप ये जो बड़े बड़े योगा शिविर होते हैं जिसमें कौन योगा सिखाता है, कोई योगा नहीं सिखाता, यम नियम में ही सब लोग आउट हो जाते हैं। कहाँ आपको कोई ऐसा पवित्र स्थान मिलेगा नहीं, ना ऊंचा नीचा कुछ नहीं मिलेगा, ना ब्रह्मचर्य पर बैठ सकते हो आप, ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो योगा करने के बाद सीधा इधर भोग कर रहे, मूवीज देखने जाता है, क्या फायदा, यूजलेस।
तो
हट योग बोलते उसको,
आसन करते हैं आसन पे ही समाप्त हो,
हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ ओरिएंटेड होता है। तीसरा है ये यम नियम और उसके बाद है आसन। ये आसन से जनरली क्या होता है कि आप बॉडी पोस्चर्स बनाते हो जिसके आपका जो शरीर होता है वो स्वस्थ होने शुरू कर देता है, जिसको हठ योग के नाम से माना जाता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। और जब आप पूरे आसन को मास्टर कर लेते हो तब आता है प्राणायाम। तो ये प्राणायाम वो आपके मन को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मन को स्थिर किया जाता है। जो एक तो प्राणायाम करते हैं उसका मन कंट्रोल में आने की गुंजाइश होती है, यू कैन कंट्रोल द माइंड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो वो प्राणायाम होता है और प्राणायाम से भी हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है। तो यम नियम आसन प्राणायाम, ये 5 कितना हुआ? 4 हुआ, ये 4। उसके बाद होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में हम क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने अपने विषयों से विड्रॉ करते हैं, इंद्रियों को अपने अपने विषयों से मुक्त करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम, पूर्ण रूप से इंद्रिय संयम, जो प्रत्याहार करना पड़ता है। तो पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अवस्थाएं जो होती है उसको योगा रुरुक्षु बोलते हैं। और इसके बाद की जो 3 अवस्था है उसको योगा रूढ़ बोलते हैं। योगा रूढ़, अरूढ़, योगा रुरुक्षु, रुरुक्षु, योग रुरुक्षु, वो प्रपद भी लिखेंगे तात्पर्य में। तो योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़, ये दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले पांच जो होते हैं वहां तक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, निष्काम कर्म योग कंटिन्यू करना पड़ता है, तब तक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि उसमें भी बात तो वही है कि आपका जो मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। बात तो वही है, आपका मन वश में आ जाता है इंद्रियों से, इंद्रियों और मन का कंट्रोल हो गया, तब उसके बाद आता है धारणा, जिसमें बुद्धि का कंट्रोल में किया जाता है। और फिर ध्यान लगाता है, धारणा के बाद आता है ध्यान, ध्यान करता है परमात्मा का। योगी ब्रह्मवादी होता है ब्रह्म का ध्यान करता है, परमात्मावादी होता है परमात्मा का ध्यान करता है, अष्टांग योगी परमात्मा का ध्यान करता है, और भगवान का भक्त भगवान का ध्यान करता है, ध्यान लगाता है, एक किसी एक वस्तु के ऊपर केंद्रित होता है वो, तो उसकी परफेक्शन स्टेज को समाधि बोलते हैं। अंत में अष्ट आठवां जो अंतिम है वो समाधि है, समाधि की अवस्था वो सबसे उत्तम है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। समाधि स्थ जब कोई होता है तब परमात्मा को वो सफल रूप से दर्शन कर सकते, जैसे नारद मुनि ने दर्शन किया था भगवान का। समाधि की अवस्था बड़ी उत्तम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा मानता है, शरीर नहीं मानता, पूर्ण रूप से सभी मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके रखा है उसने, और उसका ध्यान एकदम एकाग्र चित्त एक ही बिंदु के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर, एक ही व्यक्ति के ऊपर वो स्थिर हुआ है, तब जाकर वो समाधि अवस्था में पहुंच सकता है। लेकिन ये अवस्था प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही कम सफल योगी होते हैं जिसको ये समाधि की अवस्था प्राप्त होती हो।
इसके बारे में जी एक श्लोक याद आता है, कहते हैं कि अंतः शून्यो वही शून्यो, शून्य कुंभ इवाम भरे, अंतः पूर्णो वही पूर्णो, पूर्णा कुंभ इवाम भरे। जैसे ये घड़ा जो है वो आकाश में बाहर भी शून्य है और अंदर भी शून्य है, लेकिन वही घड़ा जब समुद्र के अंदर है तो बाहर भी समुद्र है अंदर भी समुद्र है। जब ये स्थिति होती है समाधि में, तब उसके बाद कहते हैं कि कुछ भूल रहा हूँ, साधते न के नाफी योगी युक्त समाधि, कहते हैं उसको साधते न च कर्मणा, कहते हैं योगी जब समाधि में पूर्ण रूप से स्थित होता है तो उसके ऊपर सारे भौतिक जो प्रभाव है सब खत्म हो जाता है। वो मतलब पूर्ण रूप से ये समझिए कि जैसे आत्मा स्वरूप ही हो जाता है।
yes.
उसको न जलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है।
जैसे ध्रुव महाराज,
वो बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है।
दो महाराज ने सांस बंद कर दी तो उनके योग की समाधि की अवस्था के कारण सारे ब्रह्मांड की सांस बंद हो गई, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य सब की सांस बंद गई, अटक गई, सब प्रॉब्लम में आ गए, सब गए भगवान के पास इसका उद्धार करो। समाधि का अंतिम लक्ष्य क्या है? दर्शन, भगवान सामने प्रकट होते हैं ना, तो फिर भगवान प्रकट हुए सामने, विष्णु बोलो भाई क्या चाहिए ना, तो हिरण्यकश्यप भी तो किया था, तो वो भी तो तपस्या की थी उसने, तो वो भी तो योग कर रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य तो गलत था। तो ये आएगा आगे जाके, अलग अलग उद्देश्य से करने वाले लोग अलग अलग सफलता मिलते। तो ये अष्टांग योग अब आप समझ गए, यम नियम आसन तीन, प्राणायाम प्रत्याहार दो, धारणा ध्यान समाधि आठ, है ना, ये सिंपल है, ये पांच पहले और तीन बाद में।
धारणा है कि ध्यान है?
धारणा ध्यान,
ध्यान समाधि, धारणा ध्यान करेंगे
जो अभी हमारे शरीर में माना जाता है सात चक्र होते हैं, तो उससे जो भटकते हैं तो उससे समाधि तक पहुंच जाते हैं कुछ है?
अगर आप सारे नियमों का पालन करते हो उसका जो साइंस है, तो अंत में आपको ये अष्टांग योग की स्थिति अष्टांग योग में होती है चक्र, तो धीरे 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 वो
जागृत करते बाद में
वो तो चक्र है। तो वो सब कब आता है? जब आपका धारणा ध्यान समाधि की अवस्था में होता है, ये तीन योगारूढ़ अवस्था में ये सब होता है, योगा रुक्ष में ये नहीं होता है।
ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कुंडलिनी
जागृति आज के युग में नहीं हो सकता, आज के युग में ऐसा।
तो ऐसे समाधि की अवस्था कब आती है अभी कुछ किसी को?
कलयुग में तो नहीं हो सकता, ये कलयुग में समाधि की अवस्था में नहीं हो सकती। समाधि का अर्थ होता है वो सब प्रकार की इंद्रिय जन्य मुक्तात्मा ही होता है, वो तो मुक्त बन जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि इंद्रिय भोग की अवस्था उससे मुक्त हो जाता है, शरीर आत्मा की भावना से मुक्त हो जाता है, मन बुद्धि पूर्ण रूप से वश में आ जाता है, माइनस से पूरा जीरो तक पहुंच जाता है।
उसपे समय का भी असर नहीं होता समाधि
को, सांस रोक लेती है तो उसका आयुष्य बढ़ जाता है।
टाइम जो है टाइम का असर नहीं होता।
मेन तो ब्रीदिंग में वही होता है ना कि श्वास तो गिनते नीचे है तो उसको जितना बचाते उतना वो अपने को
100-100 साल 200 साल योगी जीते कैसे जीते, सांस बंद कर दिया।
अभी हिमालय में जो योगी रहते हैं सब वो समाधि
उसमें हो सकते है, कुछ समाधि वाले हो सकते है, आई मीन वी कैनॉट से बट हो सकते है, लेकिन 99% आज के समय में प्रभाव योग का प्रभाव ऐसा है, कलयुग युग का प्रभाव ऐसा है कि इसमें ये साधना संभव नहीं हो सकती है। ऐसे 200-200 साल कुंभ में जाओ आप, 200-200 साल पुराने योगी मिलेंगे आपको, 250 साल जिंदा है, 200 साल से जिंदा है, 250 साल से जिंदा है। एक व्यक्ति प्रभुपाद को पूछा है प्रभुपाद ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभुपाद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ना सांस बंद कर दो तो आप जी सकते हो 100-200 साल, उसमें क्या है, लेकिन करने का क्या 200 साल जी के
चाहिए क्या।
हाँ वही तो उद्देश्य तो होता हो तो इसलिए अभी हम संक्षेप में बताते हैं कि आठों अवस्था में प्रॉब्लम हो सकती है, जो भक्तिवान ठाकुर ने प्रेम प्रदीप में बताया है। तो कौन से प्रॉब्लम होते हैं आठों अवस्था में? एक तो जब आप यम नियम का पालन करना शुरू कर देते हो ना, यम नियम अगर आप उसको मास्टर कर लेते हो सब प्रकार के डूज एंड डोंट्स, तो परिणाम यह आता है कि लोग आपको एक अच्छा महात्मा देखना शुरू कर देते हैं और आपको धार्मिक व्यक्ति मानना शुरू कर देते, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, आपकी पूजा करना शुरू हो जाता है और वहीं पर वो फंस जाता है, वहीं पर अटक जाता है। हाँ वे वहां से अटक गया, आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर अटक गया, गाड़ी उसकी वहीं पर अटक गई, किसी ने बोले ये लो 2 करोड़ रुपया रखो आपके पास डोनेशन के रूप में, और तीसरा आदमी बोले ये लो के एनजीओ का आप चेयरमैन बन जाओ, खत्म, वहीं पर अटक गया। तो यम नियम इसमें ये इसको फ्लॉस बोलते, फ्लॉस फ्लॉस का अर्थ होता है क्या बोलते उसको, रुकावट, रुकावट आती है ये अष्टांग योगम, अष्टांग योग। तो फिर जो लोग आसन और प्राणायाम करता है उसका उसका रुकावट क्या आता है कि वो रोग से मुक्त हो जाता है, वो सब प्रकार के रोग से मुक्त हो जाए जो आसन प्राणायाम को ढंग से करता है वो। अभी रोग से मुक्त होने में प्रॉब्लम क्या आती है, इसका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, जितना जितना तंदुरुस्त शरीर जितना शक्तिशाली शरीर उतनी इंद्रियां प्रबल हो जाती है, और जितनी इंद्रियां प्रबल उतना भोग अधिक करेगा, है ना। तो जब भोग अधिक करेगा तो वहीं पर अटक गया वो आसन प्राणायाम में। फिर प्रत्याहार जब इंद्रियों को त्याग करने का प्रयास करता है विषयों को, तो उसका एक आउटकम ये आ सकता है कि उसका हृदय जो है वो पत्थर जैसा बन जाता है और वो ड्राइनेस आ जाती है उसके, तो वहां पर ज्यादा समय टिक नहीं पाता क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर एंगेजमेंट या प्रॉपर उद्देश्य नहीं होता। तो भक्तिवान ठाकुर बताते कि वो एक प्रकार का उसका हृदय पाषाण जैसा बन जाता है। निर्दय मीन्स इमोशंस जीरो हो जाती है उसकी, अगर उसमें प्रेम नहीं होता तो शुष्क बन जाता है पत्थर जैसा, इमोशन लेस हार्ट कैसा होता है इस प्रकार वो प्रत्यार में ऐसी ही समस्या होती। और धारणा ध्यान समाधि में आइडेंटिटी लॉस करने का समस्या आ सकता है, अपनी अपना अस्तित्व है कि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मैं एक आत्मा हूं ये उसका स्वरूप है, उसको वो भूल जाता है या भूल जा सके ऐसी समस्त पॉसिबिलिटी होती है। अपना जो आइडेंटिटी है कि मैं दास हूं कृष्ण का या मैं आत्मा हूं, वो उसका भूलने की शक्यता है या संभावना है, वो अपने आप को एकत्व मानने लगता है तो यू नो हम ब्रह्मास्मि बोलना शुरू कर देगा, फिर वो मैं ही ब्रह्म हूं, और जब समाधि की अवस्था आती है उसके उसके पास धारणा ध्यान में लगता है समाधि में तो उसको अष्ट सिद्धियां मिलती है ना, जिसमें अणिमा छोटा से छोटा अणु हो जाता है, अणिमा गरिमा सबसे वो गुरु बन जाता है, बहुत बड़ा इतना विशाल का है उसको देख भी नहीं अणिमा गरिमा ईशिता वशिता है ना लघिमा, तो ये सब ईशिता वशिता का भी था उसको वशीकरण, वो जिसको वश में करना चाहे कर सकता है ना, प्रकाम्य प्राप्ति आखिर में प्राप्त काम वसायदा मीन्स उसके मन में जो इच्छा वो पूरा कर सकता है, पानी पे ऊपर चल सकता है, अग्नि में से प्रकट हो सकता है, आकाश में से एप्पल निकाल सकता है,
फिर इस ऐसी सिद्धियों को देख के सब लोग उसको भगवान मानने लगते
हैं, ये उसका रुकावट है। यहाँ से बैठ कर वो चंद्रमा भी जा सकता है, यहाँ से डुबकी मारता है दूसरी जगह से निकलता है, एक ही दिन में चारों धाम की यात्रा हो जाती है उसकी, तीन त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाता है तो सीधा बद्रीनाथ में निकलता है, बद्रीनाथ में डुबकी लगाता है सीधा जगन्नाथपुरी में निकलता है, ऐसे तो प्रभुपाद कहे आज भी है ऐसे योगी कुछ कुछ कि इनके पास ये सिद्धियां है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपके गिरनार में शिवराज का दिन इतना इतने सब लोग आते हैं लेकिन उनको कभी जाते हुए नहीं देखा, सब आते हुए देखा है बस, लेकिन जाते कहीं कभी देखा नहीं कि वो लोग वापिस जाते हो, तो जाते कहाँ पर है सबका यही प्रश्न है, हजारों लाखों लोग आते हैं वो बिंदु सरोवर या कहा दामोदर कुंड में डुबकी लगाते फिर बाहर ही नहीं आते, वहीं से सीधा ऊपर गिरनार गए, ऐसा माना जाता है उधर उस जगह पर। ये सब योग शक्ति का परिणाम होता है, योग शक्ति का प्रभाव होता है, तो इसमें ये समस्या होती है कि वो आइडेंटिटी लॉस कर सकता है, तो दैट इज अ फ्लॉ। और ये योग सिद्धि यस, तो अष्टांग योग की सिद्धियां आजकल नहीं मिलती सबको, वहां तक पहुंच नहीं पाता कोई, लेकिन किसी के पास हा भी जाता है तो इसमें फंस के वो पटक जाता है। आप सोचो वो कैसे इतना सारे फ्लॉस है, इतनी सारी रुकावट है और उसको पार करने के बाद कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, तब जाकर कोई को समाधि मिलेगी। और समाधि मिलने के बाद क्या, अब भक्ति योग की शुरुआत करो। तो ये इतना सब करने के बाद भक्ति करना है तो अभी क्या गलत कर रहे हैं आप। तो ये है उसका रुकावट।
अभी कोई कोई ऐसा है ना साधु, कितना 10-10 किलो सोना पहन के वो बैठे
हैं। हाँ, है
लैपटॉप मोबाइल सब लेके बैठे
हैं। ऐसा उन्हें के सामने लैपटॉप की क्या वैल्यू है?
कैसे
सो लाइक दैट, सो वी टेक वन मोर श्लोक। यस,
समाधि के बाद भक्ति योग मतलब वो क्या?
मैं इसे बताया क्योंकि समाधि की अवस्था में व्यक्ति को भगवान के सामने, भगवान उनके सामने प्रकट हो सकते हैं या वो देख सकता है भगवान को, जब कोई भी समझ लो कि एक योगी है उसने समाधि की अवस्था प्राप्त की, उसने इतना सफलता प्राप्त किया सामने भगवान प्रकट हो, बता क्या करे, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा योगी, करेगा क्या,
बंद कर दिया काम करना तो पहले ही बंद कर दिया,
अब वो करेगा क्या,
कर
हाथ जोड़ेगा प्रणाम करेगा स्तुति करेगा फिर क्या, फिर क्या करेगा, प्रणाम किया आरती उतार लिया और फिर क्या करेगा,
इच्छाएं तो पहले ही खत्म कर ली उसने,
हाँ तो कुछ बचा नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा,
समाधि में सिर्फ भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान नहीं,
सेवा नहीं होती उसमें,
दर्शनों में सेवा तो नहीं होती,
सेवा नहीं, सेवा होती है अर्थात भक्ति, एक्टिविटी का अर्थ होता है भक्ति, सेवा सेवा इज इम्पोर्टेंट। समाधि में दर्शन, समाधि में रहकर सेवा कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन समाधि के बिना भी सेवा कर सकते हो, लेकिन जैसे ब्रह्मवादी है तो उसकी समाधि ब्रह्म साक्षात्कार है और उसमें लीन हो जाएगा, उसका काम खत्म फुल स्टॉप। परमात्मावादी है तो वो योगी है तो वो परमात्मा का साक्षात करता है, उसकी समाधि वहां पर अटक जाती है, लेकिन भगवान का भक्त होता है उसकी सेवा निरंतर चलती रहती है, वो कभी अटकती नहीं है। द सर्विस इज नॉट देयर इन अष्टांग योग, वहां सेवा नहीं होती है। ज्ञानियों में सेवा नहीं होती, ज्ञानियों में कर्म योग तो है ही नहीं। कर्म योग में तो बेचारा आत्मा शरीर के अंदर ही फंसा पड़ा है। तो इसलिए केवल भक्ति योग एक ही ऐसा है जिसमें आपका भगवान की सेवा का स्थान है।
और उसमें शरीर का ही बंधन नहीं है क्योंकि शरीर से ही तो सेवा होगी।
हाँ, तो अपने आप सब निकल जाता है पाप कर्म, कोई अपने आप से शुद्ध हो जाता है। निष्काम कर्म योग से भी ज्ञान योग उत्तम है, ज्ञान योग से अष्टांग योग अच्छा है स्टेप अप, लेकिन अष्टांग योग से भी ऊपर है भक्ति योग। चौथा श्लोक पढ़िए।
जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है।
यस, यहाँ पर योगारूढ़ की बात होती है जिसमें उसको भौतिक रूप से सभी प्रकार के आकर्षणों से वो मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के भौतिक आकर्षण से मुक्त होना होता है योगारूढ़ में। वो व्यक्ति अगर वो चाहे कि मैं कर्म करना चाहूं तो कर सकता है, अगर वो चाहे कि मुझे कर्म नहीं करना है तो वो रोक भी सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसका मन उसके वश में है। तो अगर वो योग बंद करता भी है अपना कार्य तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो एग्जाम्पल दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए कर्म करता भी रहता है। जैसे वैष्णव होता है, अगर वो कर्म ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कर्तव्यों को, लेकिन वो करता है लोगों को दिखाने के लिए, एग्जाम्पल का। वो तीसरे अध्याय में था एग्जाम्पल बनने के लिए, वो कर्म करता रहता है। सो विमेटिक वन टेक वन मोर श्लोक देन वी स्टॉप बिकॉज आई नीड टू गो वन प्लेस, मुझे अभी एक जगह जाना है। सो आई हैव टू वी टेक वन मोर श्लोक।
मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीवी का मित्र भी है और शत्रु भी।
हाँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी, क्योंकि पूरी योग सिस्टम का जो मूल तत्व है, आधार है, वो है मन, कोई भी योग हो। इसलिए तो भगवान ने बोल दिया ना, पहला ही शब्द मन मना, मन मुझ में लगाओ। ये अंतिम तत्व, अंतिम सार सभी शास्त्रों का क्या, मन मना, मुझ में मन लगाओ। ये मन एक ऐसा वस्तु विषय है कि अगर वो चाहे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है और वो चाहे तो आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। इसलिए हमारे कुछ भक्तों ने इसका एक ड्रामा भी बनाया, नो माइंड वाला, किसी ने शायद देखा होगा आपने, राइट। तो शुरुआत में वो क्या दिखाता है कि वो कितना शत्रु है, कि जब वो मित्र बन जाता है तो आपको बचा लेता है माया में गिरने से। तो मन जो है वो शत्रु भी है और मित्र, लेकिन मन का प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा चंचल है। आज आपको जो अच्छा लगता है कल वही चीज आपको सबसे बेकार लगेगी, है ना। होता है, आज ये व्यक्ति मुझे पसंद है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, दूसरे दिन बस हम नहीं चाहिए, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है अचानक से, आज ये अच्छा लगता कल वो अच्छा लगता। एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग, इतना करता है वो, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प करता ही रहता है। मन का ये सबसे बड़ी समस्या है। मन जैसे एक प्रकार का ड्राइवर है, वो ड्राइवर के हाथ में सब जगह सब होता है, उसको कहाँ जाना कहाँ ले जाना, आपको ठोकना है तो ठोक भी सकता है और कहीं ले जाना तो ले भी जा सकता है, मन के हाथ में ये सब, मन कुछ भी कर सकता है। इसे बोलते हैं ना एम्प्टी माइंड डेविड्स वर्कशॉप, क्यों बोलते हैं? खाली मन अगर है वो तो जैसे आप कमरे में बैठे हो एक जहरीले कोबरा के साथ कमरे में बैठे हो, अगर आपका मन एम्प्टी है तो कुछ भी करवा सकता है वो। इसलिए मन किसी चीज को अनुकूल मानता है और किसी चीज को प्रतिकूल मानता रहता है, लेकिन भक्तियों की अवस्था में शरणागति के जो सिक्स स्टेजेस होते हैं उसमें मन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो अनुकूल भक्ति के लिए जो है उसको स्वीकार करना और भक्ति के प्रतिकूल जो है उसका त्याग करना, ये मन के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है। अगर जो उसमें फंस जाता है, अगर वो नहीं समझ पाता तो इसका उल्टा हो जाता है, तो भक्ति का प्रतिकूल है उसके। हमारा आज मन वैसा है, जब हम भक्त नहीं बने तब तक हमारा मन वैसा है, प्रतिकूल कार्य के प्रति हम बड़े उत्साही है। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि अकार्य उद्यमी जो नहीं करने चाहिए उस कार्य में उद्यमी, बड़ा मेहनती, बड़ा हार्ड वर्कर, वर्कहॉलिक, इतना अकार्य उद्यमी। सुकार्य है, सुकार्य है उसमें आलसी, सुकार्य में जब सुकार्य का अर्थ होता है अच्छे कार्य, जो भक्ति योग के कार्य, उसके प्रति अभी कहाँ 16 माला रोज करने का, ग्रंथों को पढ़ने का, अभी ये सब क्यों, कोई आसान शॉर्टकट नहीं बता सकते हो, कोई ऐसा कोई चीप नहीं आती, डाल दो सीधा हो गया सारा गीता भागवत चैतन्य चैतन्य सब आ जाएगा। ब्रह्मा जी को कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी के हृदय में से भगवान ने कहा मेरे हृदय में से नहीं आ सकता, डायरेक्ट पढ़ने की आवश्यकता। तो इस प्रकार का जो सुकार्य है उसके प्रति हम कुछ, तो अगली बार इसी कंटिन्यू करेंगे, छठे श्लोक में इसका कंटिन्यूएशन है। फिर 7, 8, 9 जो है वो योगा रूढ़ अवस्था बताइए, 6 तक जो है वो योगा रुरुक्षु की बात हुई है। सो वी स्टॉप हियर।